मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जनसंख्या से क्या तात्पर्य है।
देखिए, जनसंख्या दो शब्दों के संयोग से बना है, जन संख्या। सामान्यतया जब हम भूगोल में बात करते हैं या सोशल साइंस में बात करते हैं तो मानव की संख्या की बात करते हैं। वैसे भी ऐसे देखा जाए तो जनसंख्या का उपयोग या प्रयोग कई विषयों में अलग अलग तरह से होता है, पर सामान्यतया ज्योग्राफी में हम इसे मानव की काउंटिंग ऑफ हेड से लेते हैं। और ऐसे देखा जाए तो इसके साथ ही ये भी है कि जैसे बाघों की संख्या 1411 यह भी काउंट होता है, तो ऐसे काउंटिंग के लिए लिहाज से ऐसे हो सकता है। पर जब भी हम
अगर हाँ, हम इसे परिभाषित करना चाहें,
हाँ बिल्कुल,
तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी एक परिभाषित क्षेत्र या इकाई में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं।
हाँ, लोगों की कुल
यह इकाई एक गांव भी हो सकता है,
बिल्कुल,
शहर भी हो सकता है, प्रदेश भी हो सकता है, देश भी हो सकता है और विश्व भी हो सकता है। यही नहीं, हम बहुत से नस्ल, रिलीजन या रिलीजियस सेक्ट्स,
बिल्कुल,
या श्रेणी या वर्ग की जनसंख्या की भी बात कर सकते हैं, उनकी कुल संख्या को कह सकते हैं।
बिल्कुल,
जैसे सिखों की जनसंख्या या जैन की जनसंख्या,
बिल्कुल,
या मुस्लिम जनसंख्या, या कितने ही तरीके से इसको कह सकते हैं।
हाँ, मतलब जनजाति जो मानव के ह्यूमन हेड्स की काउंटिंग है वह किसी भी एक खास आधार पर जब हम काउंट करते हैं तो वह संख्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। साथ ही जब हम इस चैप्टर का भी अभिप्राय हमारा यही है कि जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन है, तो आप शिक्षार्थियों को यह भी बताएं कि संसाधन वास्तव में किसे कहते हैं।
देखिए, संसाधन का साधारण अर्थ जो है वो ये है कि वह साधन या वह वस्तु जिससे हमारी किसी भी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति होती है,
बिल्कुल,
वह संसाधन कहलाती है।
बिल्कुल,
हम इसे और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह वस्तु जिसे हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं वो भी साधन है, संसाधन है।
बिल्कुल,
तो संसाधन एक ऐसी वस्तु है जो हमारी कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं,
उनसे भी हमारे लिए जरूरी होते हैं।
अब प्रश्न उठता ये है कि जो इस चैप्टर का टाइटल है, शीर्षक है, जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन,
बिल्कुल,
तो जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन कैसे है?
देखिए, देखा जाए तो जनसंख्या यानी मानव ही ऐसा एक प्राणी है जो अपने उपयोग के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग करता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवकृत होता हो। इसलिए मानव के बौद्धिक विकास, शिक्षा और जो तकनीकी है उसके आधार पर कई तरह के रिसोर्सेज को, संसाधनों को मानव इस्तेमाल करता है और मानव द्वारा ही वो इस्तेमाल होता है। अब ऐसे में जो सुविकसित मानव होगा, अच्छा पढ़ा लिखा मानव होगा, अच्छी जिसका विकास होगा, वैसे में वह समाज के लिए एक बहुत बड़ा, कहें कि धन के रूप में है या पूंजी के रूप में है, वो एक तरह का कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो इसलिए जब जनसंख्या हमारा संसाधन के रूप में है, या यूं कहें कि जब जनसंख्या हमारे लिए एक तरह से वह भाग है जो सुविकसित होकर के हमारे संसाधनों को विकसित करता है और उसको उपयोग लायक बनाता है।
हमने जनसंख्या का अर्थ समझ लिया, हमने संसाधनों का अर्थ समझ लिया,
बिल्कुल।
अब हम कह रहे हैं कि जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन कैसे है। देखिए, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो तब तक रिजर्व की श्रेणी में आएंगे जब तक उनका प्लानिंग नहीं होगा, जब तक उनकी गणना नहीं होगी, जब तक उन्हें पहचाना नहीं जाएगा, तब तक वो जमीन के अंदर दबे हुए हैं। एक बार उनका प्लानिंग कर ली जाए कि भाई यहाँ पर इतना लौह अयस्क है या इतना कोयला है, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स हो जाते हैं।
बिल्कुल पोटेंशियल है।
अगर हम उसका उत्पादन करना शुरू कर दें तो वो बन जाते हैं एक्चुअल रिसोर्स,
एक्चुअल रिसोर्स जिसे हम,
लेकिन एक्चुअल रिसोर्स कब बनेंगे? जब मनुष्य उसका उपयोग करेगा। मनुष्य का अगर तकनीकी ज्ञान, मनुष्य का अगर एक विशेष प्रशिक्षण, मनुष्य का स्वास्थ्य, मनुष्य का पोषण का तरीका, आप कह सकते हैं
स्वस्थ
स्वास्थ्य, अगर ये सब कुछ है तभी वो उन संसाधनों का उपयोग कर सकता है, उनकी उनको निकाल सकता है, उनको और मूल्यवान बना सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मानव इसलिए संसाधन है क्योंकि वो अन्य साधनों का प्रयोग करता है और उन्हें अधिक मूल्यवान बनाता है।
और साथ ही इसमें यह है कि ऐसे देखा जाए तो जो भी हमारे संसाधन हैं असीम काल से हैं, जैसा कि अभी भी आपने कहा कि वो रिजर्व की कैटेगरी में आते हैं
जी,
और ऐसे में संसाधन तो पहले भी थे लेकिन आज जो है वो मानव ने उसे उपयोग लायक बना करके उसके उपयोग को बढ़ा दिया है। अब ऐसे में मानव का इसके उपयोग में क्या योगदान है?
देखिए, मानव का जितने भी संसाधन है उनका उपयोग अगर उपयोग अच्छी तरीके से हो रहा है तब धनोपार्जन हो रहा है।
बिल्कुल,
आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि मनुष्य एक पूंजी है,
कैपिटल है,
देश की परिसंपत्ति है।
बिल्कुल,
लेकिन कब है? जब उसमें गुणात्मक सुधार है। वो अगर मान लीजिए गुणवत्ता है उसमें तभी तो संसाधन है।
बिल्कुल, अदरवाइज तो फिर
संख्या हो जाएगा। संख्या संसाधन नहीं है।
बिल्कुल,
उसकी गुणवत्ता संसाधन है। तो अगर उसका तकनीकी ज्ञान अगर उसका विशेष प्रशिक्षण इस योग्य है कि वो संसाधनों की पहचान कर सके और उन्हें अधिक उपयोगी बना सके। पहले भी संसाधन थे, पहले भी कोयला था, पहले भी लोयस था, पहले भी डायमंड था, पहले भी जितने भी खनिज पदार्थ थे पहले भी थे, लेकिन जैसे जैसे आदमी का तकनीकी ज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे खोज हुई, जैसे जैसे उसका और ज्ञान बढ़ा, उसने उन्हें निकालना शुरू किया। आपको डॉक्टर साहब पता है कि पहले सबसे अच्छे खनिज पदार्थों का उपयोग होता था और बाकी को छोड़ देते थे, जैसे लोहेस की।
हाँ, इसलिए कि तकनीक उस समय उपयुक्त नहीं थी।
लोहेस की आप लोहेस का उदाहरण ले सकते हैं। बढ़िया किस्म के लोहेस का इस्तेमाल करते थे और जो घटिया किस्म का होता था उसे छोड़ देते थे। कोयले का उदाहरण ले लीजिए, अच्छी किस्म के कोयले का इस्तेमाल करते थे, लिग्नाइट का नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे तकनीक की विकास हुआ वैसे वैसे उस घटिया किस्म के लोहे का और घटिया किस्म के कोयले का भी इस्तेमाल
होने लगा। और उससे
तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये संसाधन, प्राकृतिक संसाधन तो पहले भी थे।
बिल्कुल,
लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ा, हो सकता है तकनीकी ज्ञान इतना अधिक बढ़ जाए कि बहुत सी चीजें जिनका अभी हमें ज्ञान नहीं है उनकी उपयोगिता साबित हो जाए और वो आने वाले वर्षों में और अधिक उपयोगी हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम के विकल्प की खोज हो रही है।
बिल्कुल,
अगर वो विकल्प इन्हें मिल जाता है तो पेट्रोलियम की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी इस तरीके से।
और वैसे में ऐसे पेट्रोलियम को बचाया भी जा सकता था फ्यूचर यूज के लिए।
जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करने वाले कारक कौन कौन से हैं?
हाँ, देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा था कि वह जनसंख्या या वह मानव जो तकनीकी रूप से शिक्षा के रूप में या स्वास्थ्य के रूप में वो उचित हो, योग्य हो, वही वो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। और ऐसे में जब देखा जाए तो जनसंख्या को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए जरूरी है कि उन लोगों की शिक्षा अच्छी दी जाए, वैसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रखा जाए, अच्छे पोषण उन्हें मिले, या तकनीकी विकास हो, बौद्धिक विकास हो, कार्यकुशलता हो उन लोगों में, तो यह हर तरह के गुणों से संपन्न व्यक्ति जो है वह ज्यादा उचित होगा हमारे विकास के लिए। इसलिए इन मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने वाले ये सभी कारक हैं। जैसा कि अभी आप शुरू में भी हमने कहा था कि अगर जनसंख्या बहुत बड़ी है, और वैसे भी भारत की जनसंख्या जो है वह काफी बड़ी है, सिवाय चीन के सबसे बड़ी जनसंख्या है। अब ऐसे में सभी लोग वो एक तरह से रिसोर्स के रूप में हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। अगर वे सभी लोग वो रिसोर्सफुल हो जाएं, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी का तकनीकी ज्ञान अच्छा हो, सभी के पास अच्छी शिक्षा हो, उचित जानकारी हो, बौद्धिक विकास हो, तो स्वाभाविक है कि उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। और चूंकि ये सिंपल संख्या नहीं बल्कि इसके साथ साथ में उनकी गुणवत्ता है, वह गुणवत्ता जरूरी है मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करने वाले जो कारक हैं वो प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य,
बिल्कुल,
पोषण की स्थिति और विशेष प्रशिक्षण, ये चार प्रमुख हैं जो मनुष्य को
कार्यकुशल बनाते हैं,
कार्यकुशल बनाते हैं, जो उसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि एक तरफ संख्या है और एक तरफ गुणात्मक सुधार है व्यक्ति में,
बिल्कुल,
तो संख्या इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
इसीलिए हमारे देश में भी जो मंत्रालय है अब, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है।
बिल्कुल,
पहले यही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर हुआ करता था।
बिल्कुल,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब मान्यता मिल चुकी है।
मान्यता मिल चुकी
है, बहुत सी स्टेट्स में भी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश हुई है।
और इसके साथ ही कई बार अब जब देखते हैं मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, उनके विकास के लिए ये कई कोर्सेज शुरू हो गए हैं, और यह भी दर्शाता है कि मानव किस तरह से वह जरूरी है और रिसोर्सफुल है, और ऐसे में वो जरूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरह से उसको ये किया जाए और उसे पनपने और बढ़ने का मौका दिया जाए या उसके गुणात्मक विकास में सुधार लाया जाए।
जी।
अब ऐसे में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जनसंख्या जो है वो एक तरह से परिवर्तित की जा सकती है रिसोर्स के रूप में, पर ऐसे में जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं और भारत में जनसंख्या वितरण कैसा है?
देखिए, ये जनसंख्या वितरण या किसी भी वस्तु का वितरण अगर आप देखें तो एक समान नहीं पाएंगे। विश्व में देखें या अपने देश में देखें या प्रदेश में देखें, अगर आप किसी भी प्राकृतिक संसाधन को देखेंगे या जो खनिज पदार्थ हैं, उनका वितरण एक समान नहीं है।
बिल्कुल नहीं है,
कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है और कहीं पर बिल्कुल नहीं है।
वही
बात जनसंख्या के साथ लागू होती है। जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आमतौर से मनुष्य उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहां उसे सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों।
बिल्कुल,
अगर जरा भी असुविधा उसे उस स्थान पर होती है तो वो वहां से पलायन कर जाता है। इसलिए जनसंख्या का वितरण भारतवर्ष में अगर हम देखें तो असमान है, अगर विश्व में भी आप देखेंगे तो वहां भी असमान है। तो जनसंख्या वितरण, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमेशा हर व्यक्ति उस स्थान पर रहना चाहता है जो आसानी से सुगम्य हो, जहां उसे आसानी से भोजन मिल सके, जहां आसानी से उसे आने जाने की सुविधा प्राप्त हो सके।
बिल्कुल,
जहां उसे आसानी से अन्य वस्तुएं उपलब्ध हो सके, उस स्थान पर रहना पसंद करता है। अगर आप भारतवर्ष में देखें तो गंगा और सिंधु का जो मैदान है, गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है,
बिल्कुल,
ये सबसे घना बसा हुआ है। सबसे घना बसा हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आसानी से उसे उपलब्ध हो जाती है।
उपलब्ध हो जाती हैं, किसी तरह की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है और अंडुलेशन नहीं है।
जी,
मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना बिल्कुल आसान है, और ऐसे में यहाँ का फर्टाइल जो लैंड है, वो उर्वरा शक्ति जिस जमीन में है, वह सबसे ज्यादा उपज यहाँ पे होती है।
अगर
देखा जाए तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर आपका अर्बनाइजेशन भी हुआ है, तो
अगर इसकी
कारण,
अगर इसकी तुलना आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से करें, पठारी प्रदेश से करें,
बिल्कुल
पर्वतीय प्रदेश से करें, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्यों घना बसा हुआ है।
और साथ ही ये भी है कि पर्वतीय और पठारी प्रदेश में वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती है, आने जाने में सुगम रास्ता नहीं है, बल्कि केवल नदी को एक पार से दूसरी पार जाने के लिए भी काफी लंबा डिस्टेंस तय करके जाना पड़ता है। ये नदियां भी वहां पे सुगम में नहीं है कि वो आसानी से कोई एक किनारे से दूसरे किनारे जा सके, इसलिए सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है पहाड़ी प्रदेशों में, वहां पर आने जाने की सुविधा और उबड़ खाबड़ रास्ते और जमीन।
जनसंख्या घनत्व डॉक्टर साहब कैसे व्यक्त किया जाता है और इसकी गणना का क्या कोई सूत्र है?
हाँ, देखिए, जनसंख्या घनत्व से हमारा मतलब है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में एक नियत समय पर कितने लोग प्रति यूनिट पर प्रति इकाई क्षेत्र में लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लें कि किसी भी एक क्षेत्र का ले लें, चाहे वो गांव का,
मतलब सिंपल सी परिभाषा ये है कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या।
बिल्कुल, यानी वह किसी भी क्षेत्र विशेष
इकाई आमतौर से वर्ग किलोमीटर होती है।
हाँ, बिल्कुल,
तो इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या
का घनत्व। वैसे ऐसा देखा जाए तो जहाँ शहरी इलाका है काफी सघन होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा उसे किलोमीटर में ही हम व्यक्त करें। वहाँ पर सघन जनसंख्या होने के कारण वहाँ जो जनसंख्या का घनत्व भी कई बार हेक्टेयर में भी हम देखते हैं कि एक हेक्टेयर में कितने लोगों की संख्या निवास करती है। तो ठीक है, आमतौर पर किलोमीटर जो है वो सर्वमान्य है और हर जगह पर इस्तेमाल होता है। पहले इसे ही वर्ग मील में हम लोग देखा करते थे जब ब्रिटिश यूनिट ज्यादा इस्तेमाल में होती थी। अब मेट्रिक यूनिट होने लगी है तो इसमें ज्यादातर हम लोग किलोमीटर में परिभाषित करते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की कुल संख्या एक नियत समय पर। इसलिए कि वैसे भी जनसंख्या का घनत्व जो है वह विभिन्न समय पर बदल जाता है या समय के साथ में उसमें और लोगों का एंट्री हो जाता है, बच्चों के जन्म होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, हाँ उसमें से कुछ लोग घटते भी हैं। तो ऐसे में जब भी जनसंख्या हम घनत्व की बात करते हैं एक नियत समय पर, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक नियत समय पर जब जनगणना होती है तो उन जनगणना वर्षों के लिए सामान्यतया ये आंकड़ा ज्यादा आसानी से मिल पाता है। अन्य वर्षों के लिए अगर हम करें तो खुद हमें ये इसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे इसको गणना करने के लिए बस वही है कि एक क्षेत्र लें, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें पता हो और उस क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या प्राप्त हो, तो उन संख्या से क्षेत्र से डिवाइड कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो वो हमारा घनत्व निकल जाता है और इसे जनसंख्या घनत्व गणना का सूत्र भी हम कहते हैं।
मतलब सूत्र हुआ जनसंख्या घनत्व बराबर
हाँ
उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या,
हाँ बिल्कुल,
उस क्षेत्र का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल
डिवाइडेड बाई
हाँ क्षेत्रफल,
उस क्षेत्र का
क्षेत्रफल बिल्कुल।
जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी स्थान की जनसंख्या 250,000 है और उस एरिया का क्षेत्रफल 1,000 वर्ग किलोमीटर है, तो अगर आप 225,000 को डिवाइड करें 1,000 से तो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
हाँ, बिल्कुल, यानी
जनसंख्या घनत्व
300 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का ये घनत्व हो जाता है। प्रत्येक, जैसा कि गुप्ता जी देखें तो जनगणना जो है वो हर 10 वर्षों पे होती है भारत में, और ऐसे में जनगणना, हर जनगणना में जन घनत्व में बदलाव हो जाता है। ऐसा क्यों?
देखिए, सन 1901 में जनसंख्या का घनत्व क्या था और जन 2011 में जनसंख्या घनत्व अब कितना है? 325 है शायद,
300 मेरे ख्याल से
382
हाँ 382 है तकरीबन,
382
382
जी,
पहले था 77
बिल्कुल,
ये 382 हो गया। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रत्येक जनगणना के बाद जन घनत्व में बदलाव क्यों हो जाता है? आपने सूत्र बताया था
बिल्कुल,
जनसंख्या डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल,
हाँ बिल्कुल,
जन घनत्व आ गया। अब अगर क्षेत्रफल ज्यों का त्यों रहता है तो हर दशक में जनसंख्या बढ़ जाती है,
हाँ,
तो नेचुरली जन घनत्व बढ़ेगा,
स्वाभाविक है बढ़ेगा। और इसीलिए हमने कहा था
अगर किसी
जनसंख्या घनत्व के लिए
जी,
कि यह जो भी जनसंख्या का घनत्व हम निकालते हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के निकालते हैं या एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निकालते हैं, इसलिए हमने कहा था कि किसी खास क्षेत्र में खास समय के लिए उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को अगर उस क्षेत्र के क्षेत्रफल से भाग दे दें तो वो घनत्व निकल जाता है। और चूंकि यहां पर विभिन्न जनसंख्या वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल वही रह रहा है, क्षेत्रफल में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं है, तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या का घनत्व बढ़ करके होता है हर एक जनगणना वर्ष।
यही कह रहा हूं मैं, जनसंख्या बढ़ी लेकिन क्षेत्रफल वही रहा,
हाँ
भारत का क्षेत्रफल जो का तो है लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो पहले 238 करोड़ थी वो आज बढ़कर 1 अरब से ज्यादा है,
1.22 अरब
के करीब, हाँ, एक करप
करीब, हाँ, हाँ, बिल्कुल।
तो इसलिए जनसंख्या का घनत्व नेचुरली बढ़ेगा। प्रत्येक जनगणना के बाद जनघनत्व बढ़ा, जनघनत्व में होने वाले बदलाव से वहां के संसाधन पर किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है?
हाँ, देखें जैसा कि अभी अभी आपने कहा कि जनघनत्व बढ़ गया, तो जैसे ही जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है, या यूं कहें कि जो संख्या हुई वह प्रति वर्ग क्षेत्र में वो बढ़ गई, और लेकिन किसी भी तरह से वहां के संसाधनों में उस तरह से वृद्धि नहीं होती है। अब जब संसाधन में किसी तरह की वृद्धि नहीं हो रही है, मानव की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में एक तरह से उन्हीं संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखें हर व्यक्ति पर, तो वो घटते चला जा रहा है। इसलिए कि वह डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ गई, लोगों की संख्या बढ़ गई, उनकी आवश्यकताएं बढ़ गई, लेकिन संसाधन ज्यों का त्यों रहा, या यूं कहें कि कई बार संसाधन ऐसे हैं जो तुरंत रिप्लेनिश नहीं हो रहे हैं, उनके मात्रा में भी कमी आ रही है, उसके क्वालिटी में भी कमी आ रही है।
आम शब्दों में आप कह सकते हाँ, हैं कि संसाधनों पर बोझ बढ़ता है।
हाँ, संसाधनों
जैसे
पर
जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा। आप उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए कृषि क्षेत्र है, किसी स्थान पर कृषि क्षेत्र है, वहां पर 100 टन मान लीजिए गेहूं का उत्पादन होता है। उत्पादन अगर किसी वजह से नहीं बढ़ता है, लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे यानी खाने वाले बढ़ जाते हैं, नेचुरली प्रति व्यक्ति उपलब्धता उसकी कम हो जाएगी,
जाती है।
उसी तरीके से अगर आप नए नए संसाधन नहीं खोजते हैं, तो उन संसाधनों पर भारी बोझ पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इससे प्रति व्यक्ति उपलब्धता उस संसाधन की कम हो जाएगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आमतौर से कह सकते हैं कि संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है।
चलिए, वैसे इस एक प्रश्न और भी मैं पूछ रहा हूं, जो कि एक तरह से रिइटरेट करने वाली बात है, इसकी हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, इसका आंसर भी हम लोग दे चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर, क्या जनसंख्या का घनत्व सदैव एक जैसा रहता है या बदलता रहता है? 2001 के अनुसार किस राज्य का घनत्व सर्वाधिक है और किस राज्य का सबसे कम?
देखिए, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं,
इसलिए हमने कहा कि इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
जनघनत्व एक जैसा नहीं रहता,
हमारे शिक्षार्थियों को ये एक बार,
जनघनत्व एक जैसा नहीं रहता, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, अगर क्षेत्रफल एक जैसा रहता है तो उसका जनघनत्व ज्यादा होता है। जैसे अगर आप उदाहरण लें भारत का, तो भारत का क्षेत्रफल तो वही है,
बिल्कुल।
अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का लें, या मान लीजिए स्टेट है, स्टेट बायफर्केट अगर हो जाती है, उसका क्षेत्रफल डिफरेंट हो जाता है।
भारत का तो नहीं बदलता है, वो छोटे राज्य अलग अलग बन गए, हाँ, वो बात अलग का है, डिस्ट्रिक्ट बदल गया,
तो लगभग क्षेत्रफल अगर वही रहता है तो जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनघनत्व सर्वाधिक है, वो है 903 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
बिल्कुल।
और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, वो है लगभग 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का अगर आप देखें, तो ये है 9000 से ऊपर, 9000 से ज्यादा है एनसीआर का, नेशनल कैपिटल रीजन का। अगर आप इसके बाद देखें चंडीगढ़ का, जो केंद्र शासित क्षेत्र है, उसका लगभग 7000 के करीब है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न राज्यों का, भिन्न भिन्न क्षेत्रों का जनघनत्व बिल्कुल अलग है। अगर आप तुलना करना चाहें, अगर आप जनसंख्या की तुलना करना चाहें, आप जनरली आप देखते हैं कि जनसंख्या को हम डॉट मेथड से और प्लस से नहीं, बल्कि डॉट मेथड से शो करते हैं, तो कभी कभी आप देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि टोटल जनसंख्या, मैं जनघनत्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल जनसंख्या की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे डॉट पश्चिमी बंगाल में लगे हुए हैं, और महाराष्ट्र में अगर आप तुलना करें महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल की, उसमें डॉट कम है।
स्पार्सली,
तो आमतौर से उसको देखकर आप जो शिक्षार्थी हैं हमारे, वो तुरंत ही ये कहेंगे कि साहब पश्चिम बंगाल की जनसंख्या ज्यादा है और महाराष्ट्र की कम। ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र का क्षेत्रफल ज्यादा है,
क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है और पश्चिमी बंगाल का क्षेत्रफल कम है,
कम है, तो इसलिए वहां पर ये डॉट ज्यादा दिखाई देते हैं और वहां पर हाँ, कम
हाँ, लेकिन घनत्व में लेकिन पश्चिम बंगाल जरूर
घनत्व
है,
घनत्व पश्चिम बंगाल का इसीलिए ज्यादा है क्योंकि
क्षेत्रफल कम है।
जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं?
देखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कई भौतिक कारक हैं, जिसमें सबसे पहले तो देखें ऊंचावच। ऊंचावच है या जलवायु है या मृदा, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के अंदर हम इसे रखते हैं। पर ऐसे में देखा जाए तो ऊंचावच जो है जनसंख्या घनत्व को किस प्रभाव प्रकार से प्रभावित करता है,
एक उदाहरण देकर समझाइए।
हाँ, जैसे
उच्चावच जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार प्रभावित करता है। हाँ, मैं एक उदाहरण द्वारा इसे आसानी से अपने शिक्षार्थियों को समझाता हूँ। अगर हम उत्तर के मैदान की तुलना हिमालयी क्षेत्र से करें,
बिल्कुल,
तो हम पाएंगे कि उत्तरी मैदान की जनघनत्व या जनसंख्या ज्यादा है और पर्वतीय क्षेत्र की कम। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जैसा कि मैंने पहले बताया था, हर व्यक्ति सुगम्य स्थान पर रहना चाहता है,
बिल्कुल,
जहां पर आसानी से आया जा सके। उस स्थान पर रहना नहीं चाहेगा जहां का क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ हो। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहां वन आच्छादित क्षेत्र है, आने जाने के साधन बहुत कम है, मृदा उपजाऊ नहीं है, तो वहां पर आदमी रहना नहीं चाहेगा। इसलिए उच्चावच या उच्चावचन एक महत्वपूर्ण पाठ अदा करता है जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने के लिए या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने के लिए। अगर आप इसकी तुलना पठारी क्षेत्र से करें तब भी यही बात सामने आती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र भी उबड़ खाबड़ होता है, वहां मृदा की पतली परत होती है, इसलिए कृषि उत्पादन भी ज्यादा नहीं होता है, इस स्थान पर भी जनसंख्या कम होती है। ठीक इसके विपरीत अगर आप मैदानी क्षेत्रों को लें जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर जनसंख्या का वितरण अधिक है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्योंकि वहां पर मृदा उपजाऊ है।
देखिए, शाब्दिक अर्थ में देखें तो उच्चावच का मतलब होता है उच्च प्लस अवच, अगर संधि विच्छेद कर दें तो ऊंच और ऊंचा नीचा जहां क्षेत्र होगा, जो अगम्य होगा, जो सुगम्य ना हो, वहां पर ये जनसंख्या जो है वो ज्यादा प्रभावित होती है, इसलिए कि वहां पर उबड़ खाबड़ जगह पर वो खेती बारी भी संभव नहीं है, उस तरह से उपज भी कम होती है, लोगों के रहने के लिए असुविधा होती है, घर बनाना मुश्किल है, रास्ते बनाने आसान नहीं है, और इसलिए ऐसे में देखा जाए तो ऊंचावच वाले भागों में जहां ऊंच नीच भाग है, उबड़ खाबड़ है, वहां पर ये जनसंख्या कम पाई जाती है, घनत्व कम पाया जाता है, जबकि सुगम्य, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा था, उन क्षेत्रों में यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, घनत्व ज्यादा होता है।
डॉक्टर प्रसाद, जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जलवायु जनसंख्या के घनत्व को कैसे प्रभावित करता है, कृपया ये बताएं।
हाँ, देखिए, जलवायु जो है वो जनसंख्या और उसके घनत्व को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करती है, कहीं के लिए पॉजिटिव होती है और कहीं के लिए निगेटिव, खास करके जहां पर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होता है या जहां पर कठिन जलवायु होती है, या तो बहुत तेज सर्दी या बहुत तेज गर्मी, वैसे क्षेत्रों में लोगों का आवास बहुत कम होता है, कम पाया जाता है, इसलिए कि वहां का जो क्षेत्र है उसको सपोर्ट नहीं करता ज्यादा जनसंख्या को, यानी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एरिया जो होती है वह कम होती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो राजस्थान का पश्चिमी भाग, जहां पर मिट्टी का विकास नहीं हुआ है, मृदा बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं है, तापमान बहुत तेज होता है, और वैसे में उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण बहुत विरल है। यही हाल, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा था, कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हों या पहाड़ी पठारी प्रदेश हों या उत्तर पूर्वी भाग का इलाका हो, उन प्रदेशों में भी इस तरह के जो तापमान कम होते हैं पहाड़ी ढलानों पर या अधिक ऊंचाई में।
नहीं, आपका कहने का मतलब है कि बहुत गर्म, बहुत ठंडे
भाग
बहुत
जो है वहां
बहुत सूखे क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है।
कम होती है, जबकि सामान्य जबकि सामान्यतया देखा जाए तो वहां पर जहां पर की जलवायु जो है मनुष्य के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है वहां पर जनसंख्या ज्यादा मिलती है। यह भी एक कारण है कि मैदानी प्रदेशों में या तटवर्तीय प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, वितरण सघन है, और बाकी प्रदेशों में जहां पर की ऊंचाई ज्यादा है, ठंडक ज्यादा है, ऊबड़ खाबड़ है, या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो सपोर्ट नहीं करता है वहां के इकोनॉमी को, तो वैसे में वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है।
इसे अपने शिक्षार्थियों को आप एक उदाहरण देकर समझाएं।
जैसा कि अभी हमने कहा था कि जैसे राजस्थान का इलाका ले लें,
राजस्थान का हाँ, सूखा हो गया,
सूखा हो गया, और पर्वतीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम है,
आप पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से कहिए, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है,
यह एक तरह से ग्लोबल रीजन है। नहीं, आप पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं, वैसे हम लोगों का जो विषय है वह भारत है, पर अगर विश्व में भी वितरण देखें तो आर्कटिक क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम है।
नहीं, मैं भारत का उदाहरण ले रहा हूँ।
हाँ, नहीं, वैसे इसीलिए हमने कहा कि
बहुत गर्म में आपने राजस्थान का उदाहरण लिया, बहुत ठंडे में आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, ये हो गए। बहुत जो नम है, जो नम है, जैसे सुंदरबन का क्षेत्र है,
सुंदरबन का क्षेत्र है बिल्कुल,
उसे आप ले सकते हैं। बहुत गर्म हो गए, बहुत ठंडे हो गए, बहुत सूखे, जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, समझे नहीं? कौन से क्षेत्र हैं? ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स।
हाँ बिल्कुल,
पूर्वी क्षेत्र जो है
रेन शैडो जोन में,
रेन शैडो एरिया जो
रेन शैडो एरिया
वो सूखे घाट आप कह सकते हैं।
वहां पर अर्ध शुष्क मरुस्थल उसे भी कहते हैं,
वहां पर भी जनसंख्या बहुत विरल है। तो आप कह सकते हैं जनसंख्या का घनत्व उस स्थान पर ज्यादा होता है, वो एक क्षेत्र सघन बसे हुए होते हैं जहां की जलवायु अनुकूल होती है।
अनुकूल है, यही तो शुरू में भी हमने कहा था।
उत्तर भारत में उत्तरी मैदानी जो क्षेत्र है यहाँ की जलवायु सबसे ज्यादा अनुकूल है, इसलिए इस स्थान पर जनसंख्या सघन है, हम ये कह सकते हैं।
चलिए, वैसे इसकी भी चर्चा कई बार हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हमारे शिक्षार्थियों को बताएं कि मृदा जो है वह जनसंख्या घनत्व को कैसे प्रभावित करती है।
देखिए, ये तो सर्वाधिक सत्य है,
बिल्कुल
हर आदमी जानता है।
हमने जिक्र भी किया कि
इसकी जहां मृदा उर्वर होगी, उपजाऊ होगी, वहां पर खेती ज्यादा होगी, वहां पर कृषि उत्पादन ज्यादा होगा। जब कृषि उत्पादन ज्यादा होगा तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होगा,
ज्यादा होगा, और साथ में
और जैसा कि मैं उदाहरण दे चुका हूँ, कि जो उत्तर भारत का मैदान है वहां मृदा बहुत उपजाऊ है। मृदा उपजाऊ ही नहीं है बल्कि वहां पर सिंचाई के साधन भी हैं, वहां पर अनुकूल जलवायु भी है, वहां पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए उस स्थान पर जनसंख्या सघन है। ठीक इसके विपरीत अगर आप देखें पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां मृदा की परत पतली होती है,
बिल्कुल पतली होती है,
दैट कैन नॉट सस्टेन मेनी क्रॉप्स, एकाध क्रॉप होती है वहां पर, तो वहां पर,
और उसमें भी रिस्क होता है कि वहां की मृदा बह न जाए, इरोजन न हो जाए, कटाव न हो जाए, तो वो भी रिस्की होता है, जबकि इस तरह का रिस्क जो है वो प्लेन एरिया में नहीं होता है, मैदानी प्रदेशों में नहीं होता है।
जी, सुंदरवन की जो क्षेत्र में बता रहा था आप, वहां दलदली भूमि है, वहां पर भी फसल ज्यादा नहीं हो सकती। इसी तरीके से आप वेस्टर्न घाट को अगर आप देखें, जो पश्चिम की ओर ढलान है, जो वहां पर भी कृषि पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं कि मृदा एक महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि जनसंख्या का वितरण और घनत्व कुछ सामाजिक आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होता है।
बिल्कुल,
वे प्रसाद जी बताइए कौन कौन से हैं?
देखिए, सामाजिक आर्थिक कारक से हमारा मतलब होता है कि वे कारक जो हमारे अपने इस्तेमाल करने के कारण, या यूं कहें कि हमारे अपने विकास के कारण, वो इस तरह से उत्पन्न हुए हैं। खास करके देखा जाए तो जहां औद्योगिकरण है या शहरीकरण है, यह एक रीजन हो सकता है, या जहां पर परिवहन या संचार की सुविधा उपलब्ध है, वह भी यहां पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, घनत्व को प्रभावित करते हैं। पर इसके पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहूंगा कि औद्योगिकरण और शहरीकरण, जैसा कि अभी हमने कहा, ये जनसंख्या घनत्व में किस प्रकार वृद्धि करते हैं?
देखिए डॉक्टर साहब, आपने बताया था जनसंख्या का वितरण और घनत्व सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। वो कारक हैं औद्योगिकरण
और
शहरीकरण, परिवहन, संचार के साधन। इसके अतिरिक्त भी
कई कारक होते
कारक हैं, जैसे बहुत से नगर सांस्कृतिक होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, धार्मिक होते हैं, एजुकेशनल होते हैं। वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो एक विशेष
कारण
की वजह से
विकसित हुए थे।
तो आपने पूछा है मुझसे कि औद्योगिकरण और शहरीकरण जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार वृद्धि करते हैं या
प्रभावित करते हैं, जो भी हो।
जहाँ औद्योगिकरण होता है, नेचुरली बहुत से स्थानों से आकर वहाँ लोग बस जाते हैं, इसलिए ताकि वो कारखानों में काम कर सके।
बिल्कुल सही।
यहाँ तक कि जहाँ खनन होता है, जहाँ खनिज पदार्थों का खनन होता है, वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बाहर से लोग आकर बस जाते हैं जो खनन क्रिया में संलग्न होते हैं।
हाँ बिल्कुल, चूंकि वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे उनका परिवार भी आ जाता है, वहीं पे वो रुकते भी हैं।
हाँ,
और ऐसे में देखा जाए तो जनसंख्या जो है वहाँ पर बढ़ जाती है।
औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल,
जहाँ औद्योगिकरण होगा वहाँ शहरीकरण होगा,
स्वाभाविक है कि शहरीकरण,
क्योंकि उद्योग धंधों में काम करने वाले व्यक्ति शहरों में रहते हैं और जहाँ औद्योगिकरण है वहाँ शहर बस जाते हैं आसपास। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों ही जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं
और बढ़ाते हैं यहाँ के घनत्व।
अब अगर आप उदाहरण लें, जमशेदपुर इसका सबसे बड़ा कारण है। जमशेदपुर अगर आप देखें तो जमशेदपुर
आयरन स्टील
औद्योगिकरण की वजह से बसा है। अगर पहले एक छोटा सा गांव था,
1904 में वो पहली बार टाटा ग्रुप के लोगों ने वहाँ पे शुरुआत की थी,
छोटा सा गांव,
100 साल का वो शहर अभी जन्म हुए उसे कहें, उसमें बिल्कुल गांव था और वहाँ पर टाटा ग्रुप के लोगों ने वहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री धीरे धीरे शुरू किया और उसके बाद में आज ये इतने बड़ा शहर बन गया है जो मतलब मेरे ख्याल से वो 15-20 लाख के आसपास की आबादी होगी अंदाजन।
कई ऐसे क्षेत्र हैं
बिल्कुल
जहाँ पर औद्योगिकरण की वजह से शहरीकरण हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि औद्योगिकरण और शहरीकरण दीज आर इंटरलिंक्ड
है। बिल्कुल,
और इससे प्रभावित होता है जनघनत्व।
जनघनत्व स्वाभाविक है,
जनसंख्या सघन होगी। जैसे जैसे आप इससे दूर होते जाएंगे जनसंख्या का घनत्व जो है कम होता जाएगा। किसी भी क्षेत्र में परिवहन और संचार भी जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं।
स्वाभाविक है।
कृपया आप बताइए कि ये किस प्रकार से जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं।
देखिए, जो परिवहन है वह लोगों के आने जाने के लिए या सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है और ऐसे में लोगों का आना जाना वह बना रहता है और ऐसे में वह मूवमेंट होता है, एक माइग्रेशन होता है और इस तरह से लोग एक खास क्षेत्र में जहां पर उन्हें मौका मिलता है रोजगार का या जहां पर कहीं भी, वो कोई जरूरी नहीं है कि शहर ही हो बल्कि यहां तक कि उन प्रदेशों में, खास करके आप हरियाणा और पंजाब की देख लें तो यहां पर बहुत सारे मजदूर जो है पूर्वी क्षेत्र से आकर के काम करते हैं। अगर ये परिवहन के साधन न हो तो वे लोग यहां पर नहीं आ सकते हैं इतना आसानी से। इसलिए जहां कहीं भी परिवहन के साधन हो वहां पर लोग एक जगह से चल करके दूसरे जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर रोजगार खोजते हैं, वहां पर वो बसते हैं और फिर इस तरह से जनसंख्या को वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने में परिवहन के साधन ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं और इस तरह से ये देखा जाए तो एक तरह से महत्वपूर्ण कारक के तौर पर है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, घनत्व को प्रभावित करता है।
इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि परिवहन के साधन उसी स्थान पर ज्यादा विकसित होंगे जो प्लेन एरिया होगा। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर परिवहन के साधन,
वहाँ तो परिवहन के साधन वहाँ पे तो उस तरह से बहुत अच्छे विकसित नहीं है,
विकसित नहीं हो सकते।
अब एक पतली सी रोड होती है, उसी रोड से आना जाना होता है, इतना आसान नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह का विकास नहीं हो पाया है परिवहन के साधन का, इसलिए वहाँ पर जो है वो घनत्व भी कम होता है, लोगों की संख्या कम होती है, वितरण जो है वो स्पार्स होता है, जबकि यही संसाधन जो है परिवहन के वो मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा विकसित हुए हैं और इसलिए यहाँ पर ज्यादा घनत्व मिलता है।
नहीं, आप तुलना कर सकते हैं, उत्तर के मैदान की तुलना आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल,
उत्तर के मैदानी इलाका जो समतल है वहाँ पर हर तरह का परिवहन का साधन है।
हाँ,
वहाँ रोड नेटवर्क और रेल नेटवर्क बहुत सघन है,
विकसित हुए हैं,
समझे। नहीं, ठीक इसके विपरीत आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर आप देखें, जो जहाँ का क्षेत्र जो है बीहड़ है, उबड़ खाबड़ है, वहाँ पर ये विकसित नहीं हुए।
हाँ बिल्कुल,
इसलिए वहाँ जनसंख्या का घनत्व उतना नहीं है जितना कि उत्तर के मैदानी
क्षेत्रों में है।
हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात हम बताएं कि ये जितने भी कारण हैं जो जनघनत्व या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, दे डोंट एक्ट इन आइसोलेशन।
नहीं नहीं, ये तो सब कुछ,
दे डोंट एक्ट इन आइसोलेशन, दे एक्ट इन
कॉम्बिनेशन,
यानी सब ये जितने भी कारक हैं सबके संयोजन से बहुत से स्थानों पर जनघनत्व प्रभावित होता है।
बिल्कुल,
अब आप एक उदाहरण लीजिए, उत्तर के मैदान में अनुकूल जलवायु है, मैदानी क्षेत्र है, मृदा उपजाऊ है, परिवहन के साधन
अच्छे विकसित हैं,
संचार के साधन विकसित हैं,
सिंचाई है।
इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जितने भी ये कारक हैं वो अकेले कार्य नहीं करते बल्कि संयोजन में करते हैं,
सभी कॉम्बिनेशन में काम करते हैं,
बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि बहुत से स्थानों पर बहुत से ये कारक काम करते हैं जिसकी वजह से उस स्थान पर जनघनत्व ज्यादा होता है।
बिल्कुल, चलिए, यह है कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है और इस परिवर्तन में संसाधनों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये भी आप हमारे शिक्षार्थियों को बताएं।
देखिए, जनसंख्या परिवर्तन का मतलब है जनसंख्या का बढ़ना एवं घटना। जनसंख्या के परिवर्तन का मतलब है जनसंख्या का घटना अथवा बढ़ना। अगर हम अपने देश में देखें तो 1921 के बाद से हमारे यहाँ पर जनसंख्या लगभग बढ़ रही है, घटने का तो प्रश्न ही नहीं,
वो लगातार बढ़ी है।
सन 1981 के बाद जनसंख्या के प्रतिशत में मामूली सा सुधार हुआ है, मामूली सी कमी आई है, लेकिन आप एब्सोल्यूट नंबर में देखें,
एब्सोल्यूट नंबर भी बहुत बड़ा है,
यानी परसेंटेज के मामले में बहुत हल्का सा
गिरावट,
बहुत मामूली सी गिरावट आई है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर तेजी से बढ़ा है क्योंकि बेस बड़ा है।
हाँ, बेस बड़ा है
क्योंकि आधार बड़ा है। आप देखेंगे 1901 में हमारी जनसंख्या, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 238 करोड़ थी, 2001 में बढ़कर यही हो गई 1028 करोड़। तो इस तरीके से ये जनसंख्या में परिवर्तन है। बहुत से देश ऐसे हैं विश्व में जहां की जनसंख्या स्थिर है
या घट भी रही है,
या बहुत से देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या, कुछ देश ऐसे हैं जहां से जनसंख्या घट रही है। जनसंख्या बढ़ती कब है? जब जनदर और मृत्युदर के बीच अंतर होता
ज्यादा हो।
अगर जनदर और मृत्युदर लगभग एक होती है, जैसा कि टेक्निकली अगर हम कहें, अगर प्रतिस्थापित दर लगभग एक रहे, यानी
तो,
एक औरत एक बच्चे को, बच्ची को जन्म दे, यानी उसके स्थान पर, अपने स्थान पर, तो वो बच्ची रहेगी। तो वो अगर प्रतिस्थापित दर एक है तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। जनदर और मृत्यु दर लगभग एक है तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। अगर मृत्यु दर ज्यादा है और जनदर कम है तो जनसंख्या घट जाएगी।
या दूसरे शब्द में इसको ये भी कहते हैं कि जितनी जनसंख्या आज है इतनी ही जनसंख्या बराबर बनी रहे इसके लिए औसतन जो फर्टिलिटी रेट है वह 2.3 माना गया है। 0.3, इस 2 का मतलब हो गया कि वाइफ एंड हस्बैंड, लेकिन 0.3 इसलिए माना गया है कि कई बार कुछ कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं। तो प्रतिस्थापित दर अगर हम देखना चाहें एक फर्टिलिटी रेट से, तो ऑन एन एवरेज हर जो लेडी है वह अगर 2.3 चिल्ड्रेन ऑन एन एवरेज जन्म देती है तो ये प्रतिस्थापित दर होता है, और ऐसे में वह जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहता है, न तो घटता है और न ही बढ़ता है। ये एक तरह के सप्लीमेंट के तौर पे अभी हमने बता दिया।
आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब दूसरा सवाल उठता है कि इस परिवर्तन का संसाधनों पर क्या असर पड़ता है।
हाँ, बिल्कुल।
अगर जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधनों पर बोझ बढ़ता है, संसाधनों पर बोझ बढ़ता
हाँ,
है।
बिल्कुल।
अगर जनसंख्या घटती है तो संसाधन यानी प्रति व्यक्ति उनकी उपलब्धता हाँ, बढ़ जाती है।
बढ़ जाती है।
हमारे देश में अगर हम अपने देश में देखें तो हमारा सबसे बड़ा जो कहना चाहिए जो सबसे बड़ा कारक है जिसकी वजह से उपलब्धता बहुत सी वस्तुओं की कम है उसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या का तेजी से
बढ़ना ज्यादा होना।
हमारे यहाँ पर विकास कार्य काफी हुआ है लेकिन उसका लाभ व्यक्तियों को नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण। तो मैं समझता हूँ कि जनसंख्या अगर हम विकास कार्य करना चाहते हैं और विकास कार्य करके सबको फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि वी शुड अरेस्ट दी ग्रोइंग पॉपुलेशन। भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, इसका प्रमुख कारण क्या है?
देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा भी था कि जो परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या में वो उसमें जनसंख्या की वृद्धि या कमी इसका कारण है। पर देखा जाए तो जहां बर्थ रेट और डेथ रेट यानी मृत्यु दर और जन्म दर में जहां पर गैप ज्यादा होगा वहां पर एब्सोल्यूट जो संख्या है वो बढ़ती है, परसेंटेज भी बढ़ता है। इसलिए जरूरी है कि बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच जो फासले हैं उसको कम किया जाए ताकि वहां पर जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको स्लाइटली चेक किया जाए। और इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है हमारे यहाँ तेजी से बढ़ने का वो एक तो इलिटरेसी है या मतलब अशिक्षा है या शिक्षा का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है या जिस तरह से सेटिस्फैक्ट्री हमारा हेल्थ कंडीशन नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, पोषण की कमी है,
पॉवर्टी
है, या मैरिज जो है वो अर्ली एज में होती है। ये इस तरह के कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ के जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ने में मदद किए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इसको थोड़ा सा वो चेक किया जाए और उस पर कंट्रोल किया जाए। अब ऐसे में देखा जाए तो जनसंख्या संरचना के विभिन्न तत्व और क्या क्या हैं?
देखिए, आयु संरचना, लिंग संरचना, ग्रामीण शहरी संरचना, साक्षरता और स्वास्थ्य, ये जनसंख्या संरचना के विभिन्न तत्व है।
हाँ, बिल्कुल।
जनसंख्या की आयु संरचना से हमारा क्या तात्पर्य है तथा निर्भरता अनुपात का क्या अर्थ है, प्रसाद जी ये हमारे शिक्षार्थियों को बताइए।
देखिए, आम तौर पर जो है ये जनसंख्या को हम आयु के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। एक जन्म से लेकर के तकरीबन 14 वर्ष की आयु तक के लोगों की कुल संख्या, फिर 15 से लेकर के 60 वर्षों तक की, और 60 वर्षों से ज्यादा लोगों की संख्या के रूप में हम तीन वर्गों में विभाजित करते हैं।
यानी कहने का मतलब हुआ बच्चे, वयस्क
और वृद्ध, ये तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो आम तौर पर भले ही कोई बच्चा 15 साल का हो, 16 साल का हो, 17 साल का हो, कमाने वाला ना हो, अर्निंग ना हो रही हो, पर यह हमारा वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत हम मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग 60 साल से भी ज्यादा के उम्र के हैं वे भी वर्किंग होंगे लेकिन उन्हें हम आश्रित की श्रेणी में रख देते हैं। अब ऐसे में एक तरह से अनुपात हम निकाल लें कि जो भी आश्रित हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे प्लस 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की कुल संख्या को अगर हम डिवाइड कर दें 15 साल से 60 साल के बीच में पाए जाने वाले लोगों की और फिर उसे 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा डिपेंडेंसी रेशियो निकल जाता है।
किशोरावस्था क्या है?
हाँ, किशोरावस्था वह है,
संक्षेप में बताइए।
हाँ, किशोरावस्था से हमारा अभिप्राय हो जाता है वे बच्चे जो न तो अब छोटे बच्चे रहे और न ही पूर्णतया वयस्क हुए हैं, और ऐसे में ये वे हैं जिनमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिपक्वता अभी नहीं आई रहती है।
एज ग्रुप बताइए उनका।
हाँ, यह इनका एज ग्रुप इसे हम 10 से लेकर के 19 वर्ष के बीच में मानते हैं, लेकिन कई बार यह जो 19 वर्ष ही नहीं,
यानी आपका कहने का मतलब है न तो वो बच्चे हैं न वयस्क।
हाँ,
अच्छा, लिंग अनुपात किसे कहते हैं?
लिंग अनुपात से हमारा अभिप्राय है कि जो मेल और फीमेल के बीच का रेशियो, अगर प्रति हजार हम देखें कि प्रति हजार मेल की तुलना में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कितनी संख्या है, तो ये हमारा लिंग अनुपात कहलाता है।
भारत में लिंग अनुपात अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? उसके हाँ, कुछ सामाजिक आर्थिक कारण
है। कई कारण है, खास करके समाज में जो मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं सामान्यतया, यह बहुत बड़ा सा एक फैक्टर है जो कि उसे उसके जो लिंग अनुपात है वह मतलब बैलेंस नहीं है। इसके साथ ही यह भी है कि गर्ल चाइल्ड को वो पोषण नहीं दिया जाता है, उनको अच्छी सुविधा नहीं दी जाती है और उनकी पढ़ाई भी उस तरह से उतनी अच्छी नहीं दी जाती है। ये बहुत बड़ा सा एक कारण है जो लिंग अनुपात में एक तरह का इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है।
इसके अतिरिक्त बाल लिंग अनुपात जो है
हाँ,
उसकी भी समस्या बहुत विकराल हो गई है।
विकराल हो गई है बिल्कुल,
और उसकी विकराल इसलिए कि कन्या भ्रूण हत्या
हाँ बिल्कुल,
कन्या शिशु हत्या
बिल्कुल
हो रही है
हाँ, और इसके लिए मेडिकल साइंस सबसे बड़ा जिम्मेवार है और हमारी मानसिकता भी इसके लिए बहुत बड़ी।
कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें यह स्थिति बहुत विकराल है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश हाँ, है, गुजरात है, पंजाब
है,
उत्तराखंड है,
राजस्थान,
चंडीगढ़ और दिल्ली भी इसमें शामिल है। डॉक्टर साहब ये बताइए, भारत में साक्षरता की क्या स्थिति है या किस प्रकार मानव को संसाधन के रूप में स्थापित करती है?
संसाधन के रूप में मानव को परिवर्तित करने के लिए केवल सिंपल साक्षरता तो नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छा एजुकेशन बहुत जरूरी है। पर जब साक्षरता की बात करते हैं तो ये होता है कि 7 या 7 वर्ष से ज्यादा के उम्र के लोगों में अपने से लिखने पढ़ने और समझने की क्षमता है या नहीं है, ये हमारी
मुझे केवल स्थिति बताइए शहरी क्षेत्र में।
यह जो है वो देखा जाए तो वो हर जनसंख्या जनगणना वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है और यह वृद्धि जो है 2001 तक ये करीब 65% के आसपास पहुंच गई है, जो कि यही 51-52 में मुश्किल से 18% के आसपास थी।
18.83
18.33।
अब ये बढ़कर हो गई 65.37%
ये हो गई है
और केरल में यह है 90.86
हाँ बिल्कुल, लेकिन
मिजोरम में 88.49
हाँ
और लक्षद्वीप में सर्वाधिक है 97.5
हाँ बिल्कुल। संक्षेप में एक चीज और आप बताते चलें कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
महिला सशक्तिकरण क्या है? इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, कृपया संक्षेप में बताइए।
हाँ देखिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में देखा जाए तो भारत के संविधान के अनुसार 73वें और 74वें संशोधन में इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के लिए महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, वो करीब 33% का है। यह जो आरक्षण जो है वो राज्य मतलब देश स्तर पर देने की भी बात चल रही है और इस तरह से देखा जाए तो 1990 के में एक कानून पारित हुआ था और 92 में एक तरह से महिलाओं के लिए एक अलग से आयोग भी बनाया गया जो ये सब कुछ देख रहा है और इसलिए जरूरी है कि समाज में महिलाओं का
सशक्तिकरण। ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि हम महिलाओं को इस तरीके से साक्षर और सशक्त करना चाहते हैं, उन्हें उनके मौलिक अधिकार दिलाना चाहते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये होने चाहिए बिल्कुल।